Afterwards, you can open that and keep it. After some time, I will see that.
Jai Radha Madhava Kunj Bihari. Jai Radha Radha Madhava Kunj Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Devaradhari. Gopi Jana, Gopi Jana Vallabha Devaradhari. Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana. Yashoda Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana. Yashoda Jamuna Teeravan Chari. Jamuna Teeravan Chari. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari. Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Devaradhari. Gopi Jana Jaya Radha Madhava Kunj Bihari. Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Devaradhari. Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Devaradhari. Gopi Jana Yashoda Yashodananda Brajajanaranjana Yashoda Yashodananda Brajajanaranjana Yashoda Yamuna Tira Vanachari Yamuna Radhamadhava Vinde Bihari Jaya Radha Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa.
शंकराचार्य स्तोत्र शिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, इसलिए चैतन्य चरितामृत के इस बड़े महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे। ये श्लोक ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब इसको पढ़ा था, इसकी रचना सार्वभौम भट्टाचार्य ने की थी, और जब चैतन्य महाप्रभु ने इसको पढ़ा, दो श्लोक लिखे थे उन्होंने, तो उन्होंने तुरंत फाड़ कर फेंक दिया, लेकिन भक्तों ने याद रखा था उस श्लोक को। और आगे चलकर कवि कर्णपूर ने चैतन्य चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में भी इसको लिखा है, तो कृपया इसको पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। दोहराइएगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधियस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधियस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मां बुधियस्तमहं प्रपद्ये भावना विकसित नहीं होती, उन सभी चीजों से वैराग्य, विद्या ज्ञान निज अपना भक्ति योग, भक्ति योग शिक्षार्थम शिक्षा देने के लिए, एकः एक व्यक्ति पुरुषः परम पुरुष पुराणः अत्यंत पुरातन अथवा शाश्वत श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरीरधारी देह धारण करके कृपां बुद्धिः दिव्य कृपा के सागर, यह जो तम उनकी अहम मैं प्रपद्य शरण जाता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। यह श्लोक तथा अगला श्लोक श्री कवि कर्णपूर कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक में पाए जाते हैं। अगले श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। तात्पर्य, भगवद्गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धार्मिक प्रथा का हास हो और अधर्म की प्रार्थना अधर्म की प्रधानता होती है तब तब हे भरतवंशी मैं अवतरित होता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में भी यही बात लागू होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट हुए, किंतु उनके आविर्भाव की पुष्टि श्रीमद्भागवत महाभारत तथा अन्य वैदिक शास्त्रों से होती है। वे इस जगत के पतितात्माओं को शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि इस कलयुग में प्रायः हर व्यक्ति सकाम तथा अनुष्ठान कर्मों में एवं मानसिक तर्क में लिप्त है। अतएव भक्ति योग को पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता थी। इसीलिए भगवान स्वयं भक्त वेश में अवतरित हुए, जिससे पतित जनसमूह भगवान के दृष्टांत से लाभ उठा सके। भगवद गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को पूर्ण आत्मसमर्पण का परामर्श देते हुए उसे संरक्षण देने का वचन दिया। दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए हैं कि वे भगवान कृष्ण के आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः अवतरित हुए, किंतु उन्होंने ये कार्य भिन्न प्रकार से संपन्न किया। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें आदेश दिया कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने हमें कृष्ण की शरण स्वीकार करने की विधि की शिक्षा दी। इसीलिए गोस्वामियों ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही परमेश्वर हैं, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को केवल यही आदेश दिया कि मेरा भक्त बनो, मनमना भव मत भक्तो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत की विधि वास्तव में सिखलाई। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसा कि सार्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य उन्नत भक्तों ने किया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज गौर पूर्णिमा का महोत्सव है, शाम को भगवान के आविर्भाव की चर्चा करेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा होगी, उससे पहले उनको प्रणाम करेंगे। कृपया आप दोहराइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, प्रकट हुए वही कृष्ण भक्त के रूप में, ये सिखलाने के लिए कि जो संदेश उन्होंने भगवद गीता में दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो कैसे उसको करना चाहिए, मनमना भव मद भक्तो, कैसे भक्त बनना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, इसको प्रकट कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषम पुराणः। तो क्या शिक्षा देने आए थे? वैराग्य विद्या, वैराग्य की शिक्षा देने आए, ऐसी विद्या को देने आए जिससे हम कृष्ण की ओर जा सकें, और साथ ही साथ अपनी ही भक्ति कैसे करनी है, निज भक्ति योगा, उसको सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इस जगत में हम लोगों की बुद्धि या मति ऐसे स्थानों पर लगी हुई है जिससे हम कृष्ण की ओर नहीं मुड़ पाते हैं। इसीलिए मति को, बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। जिस समय भीष्म देव अपना देह त्याग रहे हैं, वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान को, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, कि अभी तक मेरी मति ऐसी चीजों में लगी थी हे कृष्ण, कि जहां से मेरे लिए तृष्णा बढ़ रही थी। तृष्णा का अर्थ होता है ऐसी कामना जो कभी पूर्ण नहीं होती, भौतिक कामना, और जो सच नहीं होती। जैसे मरुस्थल में जल को देख लेना, जब मरुस्थल में बड़ी तेज धूप होती है तो उस धूप में दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल है, वो जल होता नहीं है, इसे तृष्णा कहते हैं। तो भीष्म देव कहते हैं इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, कि हे कृष्ण, इतने समय से मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो कहाँ लगी थी? ऐसी वस्तुओं में जो केवल तृष्णा को बढ़ा रहे थे, बस मेरी मति उसी में लगी थी। लेकिन अब भीष्मदेव कहते हैं कि मैं आपको अर्पण करता हूं। चैतन्य महाप्रभु यही सिखलाने आए, वैराग्य विद्या। क्या वैराग्य? कि हमारी मति जब तक ऐसी चीजों में लगी रहेगी जिससे केवल तृष्णाएं बढ़ेंगी, कष्ट बढ़ेंगे, दुख बढ़ेंगे, भौतिक अस्तित्व का बंधन बढ़ेगा, तब तक हम प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह बताना अदांत गोभीर विशतं तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। वो कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा, ऐसे व्यक्ति की मति कभी कृष्ण में नहीं लगती, परतो स्वतो वा, खुद से या दूसरों के बताने से, पर यानी दूसरों के, स्वत यानी खुद से। तो मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह वतानाम, जिन्होंने घर को ही सब कुछ मान रखा है, जिनकी आसक्ति बहुत ज्यादा घर या पारिवारिक चीजों में है, मिथो विपद्येत ग्रह वतानाम अदांत गोभीर, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, अदांत गोभीर, गो यानी इंद्रियां, तो अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम, उनके लिए भगवान ने बहुत अच्छा स्थान बनाया हुआ है नरक, विशतम तमिश्रम, क्यों, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, ऐसे जो लोग हैं वो बारंबार पुनः पुनः अर्थात बारंबार जिस चीज को चबाया हुआ है उसको ही चबाते हैं। जैसे उदाहरण है कि आप किसी चीज को चबाइए, थोड़ा सा रस आता है, लेकिन और चबाइए और चबाइए और चबाइए, रस खत्म हो जाता, फिर भी चबाते रहिए, पुनः पुनः चर्विता चरणा चर्वनाना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे लोग, ये कभी इनकी मति भगवान में नहीं लग सकती, मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा, दूसरा भी कोई आकर बहुत समझा ले तो भी नहीं लगेगी। इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति के हृदय में वैराग्य को आना ही चाहिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, इसीलिए वो कहते अदांत गोभीर, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया। जब उनके पिता उनसे कह रहे थे कि क्या सबसे श्रेष्ठ बात है, तो वो यही बता रहे थे कि आपने मेरे पिताजी सबको वश में कर लिया, तीनों लोगों को वश में कर लिया, लेकिन अदांत गोभीर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए हैं आप, क्या लाभ है आपके जीवन का। इसीलिए वो कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्वेग्न धियान सद्ग्रहान हित्वात पातं गृहंधकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेता। वो कहते हैं कि हे पिताश्री, हे असुरवर्य, तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिनाम, जिन लोगों ने देह लिया है, देहिनाम सदा समुद्विग्न, हमेशा कष्ट में रहते हैं, क्यों, असत ग्रहण, असत को ग्रहण किया है। लेकिन अगर असत को ग्रहण कर भी लिया तो एक मार्ग है, हितवात पातम ग्रह अंधकूपम, छोड़िए इस ग्रह अंधकूपम को, अपने पिता को बता रहे थे जो आसक्त थे, ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय, वन में चले जाइए, भगवान हरि का आश्रय लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए इसको समझाने के लिए आए, ताकि हम सब समझ सकें वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, और अपने ही उदाहरण से एक भक्त के रूप में इसलिए आए कि अगर जैसे उन्होंने भगवद गीता में उपदेश दे दिया भक्त को कैसा होना चाहिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, लेकिन उसको करके दिखाना भी जरूरी था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु पुनः इस पृथ्वी पर आए। तो उनके आविर्भाव की कथा तो हम लोग शाम को कहेंगे, अब इस समय में उनकी यात्रा का वर्णन करना चाहेंगे, वो यात्रा जब वो वृंदावन गए, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, सन्यास की लीला बड़े विस्तार से कई ग्रंथों में कही गई है, चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने इसको लिखा, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने इसको लिखा, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको लिखा, केवल ये दिखलाने के लिए कि इतना प्रेम होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य को दर्शाया। भक्तों में कितना प्रेम था, भक्त उनसे कितना प्रेम कर रहे थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य दिखलाया। क्योंकि जिस चीज को वो दिखलाने के लिए आए थे, बताने के लिए आए थे, अपने उदाहरण से उन्होंने प्रस्तुत किया। जिस समय वो अपनी माँ के पास गए, अगले दिन वो संन्यास लेने वाले हैं, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बता दिया, सबको फैल गई बात, उनकी माता को भी पता चल गई। अब वो रात को आए हैं अपनी माता को ये बताने के लिए कि मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं जा रहा हूं छोड़कर। और जब घर में प्रवेश करते हैं, उनकी माता को पहले से ही पता है, जैसे ही वो देखती हैं, वो जाती हैं, पूछती हैं, सुना है तुम संन्यास ले रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि आवश्यक है, हृदय में दृढ़ता लानी चाहिए। और उस समय ध्रुव महाराज की कथा उन्होंने सुनाई कि कैसे ध्रुव महाराज छोटे से बालक, उनकी माँ ने बैठने नहीं दिया गोद में, तो कैसे वो चले गए वन में, क्या क्या कष्ट उनको हुए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखलाई। और जीवन में कुछ पाने के लिए वो समझा रहे हैं, जाना पड़ेगा, संन्यास लेना है मुझे। अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं, लोकानाम तृण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। पुराण कहते हैं कि भगवान आते हैं लोकानाम तृण कारणात्, और कलौ कलियुग में गौरांग रूपेण, गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला करेंगे, संन्यास कृत संन्यास लेंगे और श्री चैतन्य नाम होगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को समझा रहे हैं और माँ कह रही है मैं अकेली हूं। विश्वंभर इनका नाम था और तुम्हारे बड़े भाई वो तो चले गए, विश्वरूप इनके बड़े भाई थे, बचपन से कोई आसक्ति नहीं, अनासक्त, केवल कृष्ण कथा भागवत सुनते रहते, पूरा पूरा समय अद्वैत आचार्य के घर पर बैठकर भागवत किया करते बस। और फिर एक समय छोड़कर चले गए, संन्यास ले लिया, शंकर अरण्य उनका नाम हुआ संन्यास का नाम, और फिर कभी वापस नहीं आए। और फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के पिता, उनका भी देहांत हो गया। तो अब माँ कह रही है, शची माता उनसे कह रही हैं कि मैं अकेली हूं और तुम भी संन्यास ले लोगे तो तुम तो मेरी आंखों की तरह हो, मैं तो अंधी हो जाऊंगी, कहां रहूंगी, क्या करूंगी। और चैतन्य महाप्रभु उनको समझा रहे हैं कि आवश्यक है, दृढ़ रहो। शची माता ने कहा ठीक है, मैं भी साथ में चलती हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा संन्यास के नियम नहीं। माता ने कहा संन्यास के नियम बड़े कठोर होते हैं, तुम कैसे पालन कर पाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण कृपा करेंगे। और फिर वो समझाने गए अपनी पत्नी को कि मैं संन्यास ले रहा। बहुत ये वर्णन लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में करते हैं, बड़ा हृदय को विदीर्ण करने वाला है कि अपनी ही पत्नी को बता रहे हैं कि संन्यास ले रहा हूं, कल के बाद आपको देखूंगा नहीं कभी। और चैतन्य महाप्रभु फिर कभी नहीं मिले उनसे, माता से मिले, शची माता से, लेकिन अपनी पत्नी से फिर कभी नहीं मिले। पत्नी ने देखा उनको दूर से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी मिले नहीं। तो ऐसे महाप्रभु ने संन्यास लिया, काटवा चले गए। इतने भाव विभोर थे जब वो निकले घर से, गंगा को तैर कर पार किया उन्होंने, कोई नाव का इंतजार नहीं किया, सुबह सुबह चले गए थे। तो ये दिखलाया उन्होंने कि वो माँ, वो पत्नी, वो बाकी भक्त जिन्होंने भी सुना, सब सुबह सुबह आए, और जिन्होंने सुना वो पत्थर हो गए ये सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु चले गए, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रेम को भी त्याग दिया हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। जिस समय काटवा में गए, केशव भारती से उन्होंने कहा मुझे संन्यास चाहिए, संन्यास दीजिए, केशव भारती ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत अभी छोटे हो, उम्र कम है, और फिर जाओ तुम अपनी माता और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर आओ। केशव भारती ने वापस भेज दिया, क्योंकि वो कैसे दे सकते थे। लेकिन फिर केशव भारती के मन में ये भाव आ गया कि ये तो और कोई नहीं, स्वयं भगवान है, ये तो जो चाहेंगे वो होगा ही। उन्होंने फिर वापस बुलाया, और लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्वयं भगवान हैं, मैं कैसे आपको सन्यास दे सकता हूं, मेरी क्या योग्यता है आपको सन्यास देने की। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं आपको बताता हूं कौन सा मंत्र देना। और चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास मंत्र उनके कान में कहा, अर्थात पहले चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु बने, उन्होंने कहा ये वाला मंत्र मुझे बताइए। तो अब उन्होंने कहा, अब आप ठीक है, आप मेरे गुरु हो गए, अब मुझे आपका आदेश स्वीकार करना है, आपका आदेश है कि आपको सन्यास दूं, मैं आपको सन्यास देता। तो उस समय फिर केशव भारती ने उनको सन्यास दिया। सारे काटवा के जितने निवासी थे वो निंदा करने लगे केशव भारती की, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा सन्यासी है, अरे इतने इतने सुंदर युवक को सन्यास दे रहा है। इतना ही नहीं, जब वो नाई को बुलाया गया, चैतन्य महाप्रभु के बड़े सुंदर बाल थे, घुंघराले बाल, जब चैतन्य महाप्रभु निकले थे तो घर से निकले उन्होंने अपने बालों को पीछे बांध लिया था, और एकदम भावा विभोर होके गंगा में कूद गए, गंगा को पार कर लिया। भागवत का श्लोक अहम तरिष्यामि दुरांत पारम, इस श्लोक को कहने के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। तो उस श्लोक को वो कहते गए, ये श्लोक भागवत के 11वें स्कंद में आता है, अवंती ब्राह्मण के द्वारा बोला गया श्लोक है, जिसमें अवंती ब्राह्मण जब सब कुछ त्यागते हैं, सन्यास ले लेते हैं, तो उस समय श्लोक को कहते हैं, प्रण लेते हैं, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, मैं पार कर जाऊंगा इस चीज को जो दुरंत बहुत कठिन है जिसको पार करना, अहम तरिष्यामि। तो चैतन्य महाप्रभु श्लोक को बोलते हुए पहुंचे थे काटवा, और फिर मना कर दिया कि मैं बाल नहीं निकाल सकता, इतने सुंदर बाल हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा कि चिंता नहीं करो, तुम ये कार्य करो और तुम मेरे ये बाल निकालोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे जितने भी पाप हैं, तुम्हारे जितने भी जन्म हैं, वो सब कट जाएंगे, तुम केवल मेरे बाल काटो और तुम भगवान के धाम जाओगे। और फिर आंखों में आंसू रोते हुए उसने चैतन्य महाप्रभु के बालों को काटा, सर को शेव किया, और ऐसा वर्णन है कि उसके बाद उसने फिर कभी किसी के बाल नहीं काटे। और चैतन्य महाप्रभु ने मुक्त कर दिया उसको, जीवन जन्मों के पाप काट दिए। ये भगवान की सेवा का महत्व है। जिस समय श्री रामचंद्र गंगा नदी पार कर रहे थे, केवट उन्हें गंगा नदी पार करा रहा था, तो ऊपर से देवता बड़े प्रसन्न होकर केवट के भाग्य की सराहना कर रहे थे कि क्या भाग्य है इसका, पैदा तो हुआ है एक मछुआरे के रूप में, लेकिन भाग्य देखिए भगवान को नदी पार करा रहा है। और देवताओं ने कहा, अरे भगवान को नदी नहीं पार करा रहा, खुद भी और अपने सारे पूर्वजों को भवसागर पार करा रहा है। तो ये भगवान की सेवा का महत्व है। चैतन्य महाप्रभु की छोटी सी सेवा, केवल उनके बालों को काटा और वो भवसागर पार हो गया। भगवान को केवल नदी पार कराई केवट ने, और वो और उसके जितने वंशज हैं, पूर्वज हैं, सब मुक्त हो गए, भवसागर पार कर गए। तो ये भगवान की सेवा का महत्व है। तो सच्चा वैराग्य क्या है, कौन से वैराग्य को देने आए चैतन्य महाप्रभु? क्या बाहरी दिखावे को देने आए? क्या ये कहने आए कि हम सबको सन्यासी होना चाहिए? क्या ये कहने आए कि केवल सन्यास लेकर, घर त्याग कर ही भक्ति की जा सकती है? चैतन्य महाप्रभु ऐसे वैराग्य को देने आए जिसमें व्यक्ति ये जान सके तीन चीजें। पहली चीज, श्री कृष्ण भोक्ता है, एक ही भोक्ता है, और वो है श्री कृष्ण। दूसरी चीज, एक ही स्वामी है और वो है श्री कृष्ण। जैसे हम उस दिन भी भागवत क्लास में कह रहे थे, वस्तुत सकलि तव जीवे के होनाय, अहम मम भ्रमि भ्रमि भोगे शोक भय। तो ये जानना कि भोक्ता है श्री कृष्ण, स्वामी है श्री कृष्ण, और अगर किसी के सुहृद या मित्र हैं तो वो हैं श्री कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति ये तीन चीजें जान ले और उसका पालन करे, वो सच्चा वैराग्य है। ये सच्चे वैराग्य के लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि फिर व्यक्ति भोग नहीं करेगा। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सबसे परम भोक्ता, सबसे श्रेष्ठ भोक्ता, परम भोक्ता श्री कृष्ण है। तो वैराग्य का अर्थ है इस बात को समझना, हम भोक्ता नहीं हैं, हम यहां भोग करने के लिए नहीं आए हैं, आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं। व्यक्ति क्या क्या करता है भोग करने के लिए? पाप करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, कर्मों को अपने ऊपर लेता है, जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म होता है केवल भोग करने के लिए, थोड़ा सा इंद्रिय सुख, और उसके लिए कई कई जन्मों का कष्ट, फिर थोड़ा सा इंद्रिय सुख, कई जन्मों का कष्ट। क्या मिलता है हमें? तो इसीलिए ये जानना कि भोक्ता भगवान है, हम भोक्ता नहीं हैं, इसको समझाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। और दूसरी बात, सब चीजों के स्वामी वस्तुत सकली तब श्री कृष्ण है। हमारा इस जगत में कुछ नहीं है, हम तो मानते हैं ये मेरा है। हम लोग कई बार ये बातें सुन चुके हैं, लेकिन हम विश्वास से आपको कहते हैं, अगर इन बातों का पालन करना प्रारंभ कर दें, एक क्षण में मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोग पालन नहीं करते, हम सुनते हैं भोग करना भगवान के लिए है, हम लोग भोगता नहीं है, फिर भी भोग करते हैं। ये बोलने में भी भोग करते हैं, क्योंकि जब बोल रहे हैं तो हमारे मन में आता है, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, ये आनंद आता है मेरे हृदय में, ये भोग है, ये भगवान की सेवा नहीं। तो भोग हम लोग करते हैं, इस बात को नहीं समझते। दूसरा, अपने आप को स्वामी मानते हैं कि ये मेरा है, अगर मैं इसका कुछ नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैंने परिवार नहीं चलाया तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। आप देखिए कितने लोगों के घरों में अचानक कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, क्या परिवार मर जाता है साथ में? कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा कष्ट होता है, परिवार चलता रहता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था होती रहती है। लेकिन व्यक्ति सोचता है मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, मैं ही स्वामी हूं इस जगत का, सारी भूमि गोपाल की है, और हम लोग तो केवल थोड़ी भूमि पर स्टैंप लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, लड्डू बांटते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उस पेपर को बड़ा संभाल कर रखते हैं लॉकर में कि मेरी जमीन है। जमीन नहीं मिलती है हमें, केवल पेपर मिलता है, थोड़े समय रहते हैं फिर चले जाते हैं और फिर कोई और ले लेता है उसको। हम लोग वहीं, वो जमीन वहीं रहती है, लोग आते जाते रहते, अपना अपना कहते रहते हैं, बस जमीन कहीं नहीं जाती। इसी तरह ये वैराग्य को समझना आवश्यक है कि हम इस वैराग्य को समझें और जाने ध्यान से। और तीसरी चीज कि कृष्ण ही केवल हमारे सुहृद हैं, सुहृद अर्थात हमारा अच्छा सोचने वाले केवल कृष्ण हैं और कोई नहीं, कृष्ण और उनके भक्त। इन चीजों को अगर हम लोग जान लें तो ये सच्चा वैराग्य हृदय में प्रकट हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे वैराग्य को देने के लिए आए, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को भी उन्होंने प्रकट करवाया, कुछ स्थलियों को स्वयं और कुछ को अपने शिष्यों के द्वारा, और इसीलिए वे वृंदावन गए। जब संन्यास उन्होंने ले लिया तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विस्तार से उनके वृंदावन लीला या वृंदावन भ्रमण का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जब पहुंचे, कई स्थानों पर घूमते घूमते एक ग्राम में आए जिसका नाम था अरिट ग्राम। अरिट ग्राम ये वो स्थान था जहां अरिष्टासुर का वध किया था भगवान ने। वृंदावन में कई ग्राम आज भी भगवान की लीलाओं के द्वारा जाने जाते हैं, जैसे अनियोर, गंथोली धाम या गंथोली ग्राम, ये सारे जहां जहां भगवान ने जो लीलाएं की उसके अनुसार उस ग्राम का नाम पड़ गया। तो अरिट ग्राम भी अरिष्टासुर के वध के ऊपर है, जहां अरिष्टासुर की उद्धार हुआ था उसको अरिट ग्राम। वहां पर आए चैतन्य महाप्रभु और वो ढूंढ रहे थे कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है, किसी को पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा वहां पर लोगों से, किसी को नहीं पता कहाँ है। अब फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब तो ये लुप्त हो चुका है, इसको पुनः प्रकट करना चाहिए, और क्योंकि वो भगवान हैं इसीलिए उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को खोजा। दो छोटे छोटे सरोवर, जरा से बहुत थोड़ा पानी था उनमें, खेतों के बीच में थे, चारों तरफ खेती हो रही थी चावल की। चैतन्य महाप्रभु जाकर वहाँ स्नान करने लगे, सब लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि अरे ये सन्यासी को क्या हो गया, ये इस पानी में यहाँ पर स्नान कर रहा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सबको बतलाया कि ये जो दो कुंड हैं ये राधा कुंड और श्याम कुंड हैं। फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के बाद उनको निकाल कर बहुत अच्छा बनाया गया, आज जो हम लोग श्याम कुंड राधा कुंड देखते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते फिर गोवर्धन आए, वहाँ से आगे निकले तो फिर वो सुमन सरोवर या कुसुम सरोवर पर आए, वहाँ पर पहुँचे। फिर उसके बाद आगे चलकर उन्होंने मानसी गंगा में स्नान किया, और मानसी गंगा में स्नान करके करते समय गोवर्धन को देख रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और गोवर्धन को देखकर बारंबार एक श्लोक कह रहे थे जो भागवत का श्लोक है, हंताय मद्रिरबला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। तो वो बोल रहे थे गोवर्धन का वर्णन, गोवर्धन के विषय में कि कैसे गोवर्धन इतना श्रेष्ठ है, हरिदास वरियो, हरिदासों में श्रेष्ठ है गोवर्धन। और ऐसे वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे गए गोवर्धन में, उन्होंने हरिदेव जी के दर्शन किए। आज भी जब भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं तो मानसी गंगा के पास पहले हरिदेव जी का दर्शन करते हैं और फिर आगे परिक्रमा करते हैं। आज भी बहुत सुंदर मंदिर है हरिदेव जी का, थोड़ा सा अंदर जाकर है, साधारण लोग जाते नहीं हैं, लेकिन भक्तों को जाना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए हरिदेव जी के, और फिर वो आगे परिक्रमा पर गए, उन्होंने गोवर्धन के अन्य स्थानों पर गए। एक हृदय में इच्छा थी उनके कि वो गोपाल जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं तो गोवर्धन पर चढ़ नहीं सकता, अपने पांव उस पर नहीं रख सकता। चैतन्य महाप्रभु आगे आने वाले भक्तों के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने गोवर्धन शिला देखी तो गोवर्धन शिला को आलिंगन किया उन्होंने और रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे, बहुत कीर्तन किया उन्होंने वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने। अभी जब हम लोग भी जाएं तो हमें भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो वो दिखला रहे हैं कि हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए अपने पांवों से गोवर्धन को, तो इसलिए वो चढ़े नहीं। उस समय गोपाल जी ऊपर थे गोवर्धन में, उनका मंदिर वहां था, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करना चाहते थे लेकिन फिर भी ऊपर नहीं गए, क्योंकि अगर वो चले जाते तो फिर पीछे हम लोग भी सब चलते कि हाँ चैतन्य महाप्रभु गए, हम भी जा सकते हैं। लेकिन आज हम लोग नहीं जाते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं गए। लेकिन गोपाल जी ने एक योजना बनाई, चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते थे गोपाल जी को, तो ऐसा हो गया कि अचानक खबर फैल गई कि मुसलमान सैनिक आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप लोग ये जगह छोड़कर चले जाओ और गोपाल जी को भी लेकर चले जाओ। तो भक्त जल्दी जल्दी गोपाल जी की मूर्ति को लेकर वहां से भागे, कहीं जंगलों में छुप गए, कहीं वनों में रह गए, कहीं पर कोई गाँव में घूमने लगे, ऐसे कई दिन तक घूमते रहे और फिर थोड़े समय बाद गंथोली ग्राम में आए और वहाँ पर फिर गोपाल जी रहे थोड़े समय, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनका दर्शन नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर रह रहे थे तो उन्हें पता चला कि गोपाल जी गंथोली ग्राम में हैं। गंथोली ये वो जगह है, आज भी गंथोली ग्राम है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक समय राधा और कृष्ण के कपड़ों को गांठ मारी गई थी, गंथोली गंथ गांठ, तो इसीलिए उसका नाम गंथोली ग्राम पड़ा। तो ऐसे वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने गोपाल जी के दर्शन किए। गोपाल जी के दर्शन होने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आगे की ओर चले गए। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर आदर्श स्थापित कर रहे हैं, भक्त को कैसे भगवान का आदर करना चाहिए। जैसे भक्त जो होते हैं ये अपने आचरण से हमें सिखलाते हैं, इसलिए भक्तों की बहुत आवश्यकता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति एक समुद्र में है, जब हम लोग समुद्र के किनारे होते हैं तो हमें दिखाई दे जाता है हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, लेकिन अगर आप बीच समुद्र में हो तो आपको कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा, किस दिशा में जाना है। जैसे अगर हम लोग समुद्र के किनारे से निकलते हैं तो पता चलता है दिख रहा है, उस तरफ जाएंगे तो घुमा देते हैं बोट को, इधर चले जाएंगे। अब आप बीच समुद्र में हैं, चारों तरफ केवल समुद्र ही है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, सब तरफ पानी है, आप अगर गलत घूम गए तो ठीक से पहुंचेंगे नहीं। तो उस समय जहाज को या एक जो सैनिक होता है तो उसको कैसे, नाविक होता है उसको कैसे पता चलता है कहाँ जाना है। उसके पास एक, अभी तो बहुत सारे हमारे बोट्स में हाईटेक चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हाईटेक चीज़ें भी हैं उसी आधार पर कि उसको दिशा दिखाने वाला एक दिशा का मार्ग होता है कि किस तरफ उत्तर दिशा है, किस तरफ दक्षिण दिशा है। उसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाँ कौन सा यंत्र, धोखा यंत्र, हाँ दिशा सूचक, ओके ठीक है, दिक्सूचक ठीक है, जो भी है तो उसके द्वारा पता चलता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। जैसे भी लोग बोट में जाते हैं तो कैसे पता चलेगा, उसमें तो कोई हाई, जैसे प्लेन उड़ता है तो प्लेन में सब कुछ लगा रहता है, उसमें सब आता रहता है, आप कितनी नॉर्थ में कितना डिग्री जा रहे हो, साउथ में, सब आता है, लेकिन बोट चला रहा है उसको क्या पता कहाँ चारों तरफ पानी है, तो उसके द्वारा देखता है, हाँ इधर जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, चलता है फिर पता चलता है। तो ऐसे ही हम सब भवसागर में हैं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, तो भक्त जो हैं वो दिक्सूचक की तरह हैं जो दिखाते हैं, चलो इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसे जाना है। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हमें ये दिखलाने के लिए। और वृंदावन में एक समय वो जब रह रहे थे तो एक स्थान पर गए और वहाँ पर ऊपर पावन सरोवर वहाँ पर था, पावन सरोवर में उन्होंने स्नान किया और फिर ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी थी उस पर चढ़े और वहाँ के लोगों से पूछने लगे कि यहाँ कोई विग्रह है, यहाँ कोई मंदिर है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ मंदिर तो कोई नहीं है, यहाँ विग्रह हैं, वहाँ पर एक गुफा है ऊपर और गुफा में तीन विग्रह हैं। जय शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, शिष्य गणिताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने कहा कि ऊपर एक गुफा है और गुफा में दो बड़े बड़े मूर्ति हैं और एक छोटी सी मूर्ति है उनके बीच में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ये कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु गए और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गए उन्होंने जाकर दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो कौन थे आप लोग जानते हैं, तीन डीटी, नंद महाराज, यशोदा और कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय दर्शन किया, आज तो बहुत सुंदर मंदिर वहां पर बना दिया गया है, लेकिन उस समय वो गुफा थी और कोई जाता नहीं था, पूजा कोई करता नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी किया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कई चीजों को प्रकट कराया ये समझाने के लिए कि भक्ति का अर्थ है प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, उसे भक्ति कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए क्या प्रदान करने के लिए? कृष्ण प्रेम, निज भक्ति योगा, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने आए, ये समझाने के लिए कि भगवान जीते जाते हैं केवल प्रेम से, और किसी चीज से नहीं जीते जाते भगवान। जैसे उदाहरण के लिए एक शिकारी है, शिकारी के क्या गुण हो सकते हैं? शिकारी में कोई गुण होते हैं तो शिकार करता है, लेकिन शिकारी के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, उसको उसको भक्त बना देते हैं। कौन शिकारी बना? हाँ, मृगरारी। और हाँ, वो डाकू और शिकारी दोनों थे, रत्नाकर। तो क्या योग्यता है? ऐसे एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ये सब कहा गया। तो अगर हम योग्यता देखें, गुण देखें, तो उनमें क्या गुण थे? वो तो मार रहे थे, कुछ पता नहीं था शिकारी को, लेकिन वो मारते थे। या फिर उम्र देखी जाए, ये सोचिए कि अगर हम लोग सोचें कि भगवान को प्राप्त करने में ये सब महत्वपूर्ण है, तो उम्र देखी जाए तो ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी? कौन से वो बड़े वरिष्ठ हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, बहुत अनुभव हो गया था? 5 साल के बाल। प्रहलाद महाराज 5 साल के बाल, लेकिन भगवान ने उनको भक्ति दी। ध्रुव महाराज को उन्होंने भक्ति दी 5 वर्ष की उम्र में, और कैसी भक्ति? देखते ही आंखों से आंसू आने लगे ध्रुव महाराज के, तो ऐसी भक्ति उन्होंने प्रदान की। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, लेकिन ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान के बिना तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो गजेंद्र को कौन सा ज्ञान था? हाथी था, हाथी था ना? कौन से शास्त्र पढ़ रहा था वो? पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, लेकिन अभी क्या कर रहा था? कौन से वो शास्त्र पढ़ा, कौन से गुरुकुल गया? तो गजेंद्र को कौन सा ज्ञान था? लेकिन क्या भगवान ने उसको प्रेम प्रदान नहीं किया? तो ये सारी चीजें, या सुंदरता, सुंदरता से भी भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। कुब्जा का उदाहरण है, कुब्जा कौन सी सुंदर थी? कुबड़ी थी, ऐसा पूरा, लेकिन भगवान ने उसको बाद में सुंदर बनाया, वो अलग है, लेकिन कुब्जा पर कृपा की भगवान ने। तो हमारे गुण, हमारे उम्र, हमारी ज्ञान, हमारा सौंदर्य, ये भगवान को प्रभावित नहीं करता। या फिर हमारा धन, कोई कह सकता है कि धनी व्यक्ति है, भगवान उसके ऊपर ज़्यादा कृपा करते हैं। एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया था, एक पत्रकार सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें किसी ने, एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि आप लोग इतना भगवान भगवान करते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ बड़ी पक्षपात होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, आप देखिए, आप बालाजी में दर्शन के लिए जाइए, लोग एक एक दिन लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी देर तक लाइन लगती है, दूर तक, और आते हैं और उनको बस दर्शन होता चले जाते हैं। और भी वहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उन्होंने नाम लिया, अमिताभ बच्चन आता है, हमें पता नहीं था, शायद गए होंगे, तो उन्होंने नाम लिया कि वो आता है, तो सबको रोक दिया जाता है, वो सीधे अंदर जाता है, दर्शन करता चला जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? पैसा है उसके पास, और इसीलिए आप लोग या मंदिरों में पक्षपात होता है। तो हमने उनसे कहा कि हाँ, ये तो सही है जो आप कह रहे हो, लेकिन आप, आपकी दृष्टि है ये, आप दूसरी दृष्टि से देखो। जो व्यक्ति 6 घंटा लाइन में खड़ा है, उसके ऊपर भगवान की दृष्टि 6 घंटे तक है, और जो ये आपका अमिताभ बच्चन आया 2 मिनट करके चला गया, भगवान की दृष्टि कितनी बार पड़ी उसके ऊपर? 2 मिनट के लिए। भाग्यवान कौन है, 6 घंटा खड़े रहने वाला या 2 मिनट में दर्शन करके चले जाने वाला? Yes. तो ऐसे समझना चाहिए, भगवान कोई धन से प्रभावित नहीं होते। सुदामा के पास कौन सा धन था? भगवान ने चरण धोए उसके। बताइए, कौन से बड़े बड़े राजाओं के धन चरण धोए भगवान ने? कौन से अमीर आदमियों के चरण धोए भगवान ने? सुदामा के चरण धोए। तो सुदामा के पास कौन सा धन था? तो भगवान कोई धन से, सौंदर्य से, ज्ञान से, ये सब चीज़ों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, या उम्र से। वो तो प्रभावित होते हैं प्रेम से। कभी कभी लोग अपने जन्म का बड़ा अहम करते हैं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, ये व्यक्ति ब्राह्मण कुल का नहीं है, इसके अंदर क्षत्रिय भाव है, उसके अंदर वैश्य भाव है, ये अहंकार हमें हो जाता है अपने ब्राह्मण कुल का। तो विदुर का उदाहरण है, कौन सा कुल था उनका, दासी पुत्र थे वो, एक दासी के गर्भ से जन्मे थे, लेकिन क्या भगवान ने कृपा नहीं की, दुर्योधन को छोड़कर विदुर के घर गए। जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे, दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्था की थी कि इनको जरा मैं अपने, कभी कभी ऐसा होता है, दुर्योधन ने एक राजा को तो ले भी लिया था, माद्र नरेश को, क्योंकि उनके लिए अच्छी व्यवस्था की, और उन्होंने कहा ठीक है जिसने भी मेरे लिए अच्छी व्यवस्था की है मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, दुर्योधन ने कहा मैंने किए। तो जब कृष्ण भी गए थे तो बहुत व्यवस्था की थी, 56 भोग बैठाने के लिए बढ़िया स्थान महल ये वो सब रेडी करके रखा था, कृष्ण आ रहे हैं, और जब कृष्ण को उन्होंने कहा कि आइए चलिए, कृष्ण ने कहा कोई इच्छा नहीं। और बहुत सुंदर बात कृष्ण ने कही कि क्यों नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा क्योंकि तुम मेरे भक्तों के द्वेषी हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे द्वेष करते हो, सकता है दुर्योधन उनसे द्वेष ना करता भी हो, या भगवान तो मानते नहीं, भगवान को मानना चाहिए, कोई उनसे द्वेष करे तो उसके घर नहीं जाएंगे, कोई उनसे प्रेम करे उसके घर जाएंगे, भगवान को समान रहना चाहिए। तो भगवान कहते क्योंकि तुम मेरे भक्तों से द्वेष करते हो, भक्तों के विरोधी हो, शत्रु हो, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, लेकिन विदुर के घर चले गए। तो इसलिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती भक्ति में, प्रेम, और चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को हमें देने के लिए आए। और इसीलिए वृंदावन में उन्होंने इतनी सारी स्थलियों को खोजा ताकि आगे चलकर हम लोग वहां जाके उनके दर्शन करें उन स्थलियों के, और हमारे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हो सके। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए। तो एक भक्त को चाहिए कि वो जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, अपने आसपास भक्ति को फैलाए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको देते हैं, कष्टों में भी हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, जब हमारी भक्ति बड़ी अच्छी चल रही होती है तब तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, भक्ति बस यही एक जीवन है, और जरा से कष्ट आते हैं जीवन में तो फिर ये सब बेकार की बातें, आप लोग कीजिए भक्ति, क्या फायदा, मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी सेवा की और ऐसा हो गया। तो एक भक्त को कैसे होना चाहिए, एक उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति ने 3 चीजें अलग अलग पानी में रखकर बॉईल की, उसको उबाला, 3 में से 2 चीजें अच्छी नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं, भागवत में वर्णन नहीं करना चाहिए लेकिन ठीक है। एक थी आलू, आलू को रखा उसको बॉईल किया, दूसरा था अंडा, इसीलिए हम कह रहे थे बोलना नहीं चाहिए, और तीसरे थे कॉफी के बीज। कॉफी अब जानते हैं आप लोग, कभी सुना है नाम चाय कॉफी, थैंक यू, तो कॉफी के जो बीज होते हैं वो। तो तीनों को अलग अलग पानी में रखा और तीनों को बॉईल किया, और उसने कहा जिनके सामने वो कर रहे थे कि इन तीनों को देखकर आप बताइए आपको क्या समझ में आता। तो आलू बॉईल हो गया, अंडा बॉईल हो गया, ये जो बीज थे बॉईल हो गया पानी में। तो पूछा तो किसी को समझ नहीं आया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया, उन्होंने कहा कि देखिए जो आलू था ये पहले बहुत कठोर था, लेकिन जब इसको बॉईल किया गया तो क्या हो जाता है, आलू बहुत नरम हो जाता है ना, और दूसरी ओर अंडा इसके अंदर लिक्विड होता है ना, तरल होता है, लेकिन जब बॉईल किया जाता है तब क्या होता है, एकदम कड़क हो जाता है अंदर से, है ना, और तीसरी ये जो कॉफी के बीज हैं उनको जब बॉईल किया जाता है तो क्या होता है, कोई जानते हैं, हाँ पानी का कलर लाल हो जाता है, बस इतना ही, नहीं नहीं दाने बड़े नहीं, कॉफी के बीज हैं आप उन्हें बॉईल करोगे क्या होगा, पानी लाल हो जाएगा, ठीक है और कुछ, हाँ कॉफी का सुगंध, सुगंध तो नहीं दुर्गंध बोलना चाहिए उसको। वैसे कभी कभी लोग ये शब्द बड़े गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार किसी ने कहा कि अगरबत्ती की कितनी अच्छी बास आ रही है, बास बदबू के लिए कहा जाता है, सुवास होना चाहिए, सुगंध या दुर्गंध, गंध नहीं है। तो कभी कभी लोग ऐसे कह देते हैं, स्मेल इंग्लिश में भी सब इस्तेमाल करते हैं, कितनी अच्छी स्मेल है, स्मेल नहीं, स्मेल तो गंदी होती है, उसको बदबू कहा जाता है, उसको फ्रेग्रेंस कहते हैं। अच्छा जो होता है उसको फ्रेग्रेंस कहते हैं, गंदा जो होता है उसको स्मेल कहते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, स्मेल बदबू ऐसा नहीं होना। तो कॉफी का जो आप लोग जैसे सुगंध कह लो या दुर्गंध कह लो, जो भी है उस हमें नहीं पता उसको क्या कहना चाहिए, हमारे लिए दुर्गंध है, आपके लिए सुगंध हो सकती है। तो कॉफी की गंध फैल जाती है पूरे पानी में, पूरा पानी को वो बदल देती है, ठीक है। तो ये तीन उदाहरण से हम लोग भक्ति में क्या सीख सकते हैं, आप में से कोई बताइए क्या सीख सकते हैं। आलू आलू कमजोर हो गया, अंडा कड़क हो गया और कॉफी का कलर फैल गया, क्या? ठीक है, आपको समझाते, ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे, आप लोगों को आदत नहीं है, बचपन में भी शायद परीक्षा नहीं दी होगी आप लोगों ने। सबसे पहला चीज कि आलू जरा कड़क था लेकिन वो बॉईल करने पे नरम हो गया। तो कभी कभी भक्त जब तक जीवन में कष्ट नहीं आता बड़ी अच्छी तरह भक्ति करते रहते, बड़े कड़क, यस सोला माला जप, मंदिर आना, सेवा करना, सब कुछ चल रहा है बढ़िया एकदम। और जैसे ही कष्ट आता है, पानी बॉईल होने लगता है, गर्मी, कष्ट शुरू हो गया, तो क्या होते हैं वो, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। जैसे आलू एकदम ऐसे दबा सकते हैं, पहले आलू को हाथ से नहीं दबा सकते, बड़ा कठोर होता है ना, लेकिन बाद में जरा बच्चा भी ऐसे दबाएगा तो दब जाते हैं। तो कभी कभी भक्त जब जीवन में कष्ट आते हैं तो आने के पहले बड़े अच्छे रहते, बड़े स्ट्रांग, लेकिन जहां जीवन में कष्ट आए तो एकदम कमजोर हो जाते हैं, उन कष्टों को झेल नहीं पाते, या तो भक्ति को त्याग देते हैं, या भक्तों को त्याग देते हैं, या निंदा करने लगते हैं, या कुछ कुछ एकदम कमजोर हो जाते हैं, भक्ति में छोड़ देते हैं, भक्ति को पालन करना छोड़ देते हैं, भक्ति का बहुत कमजोर हो जाते हैं। दूसरे ओर अगर हम अंडे का उदाहरण देखें तो अंडा बड़ा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो बड़े, आप देखोगे कि कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कड़क नहीं है, नम्र है, लेकिन जब कष्ट आता है तो भक्ति में और स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? वो भगवान की और शरण जाते हैं। तो ये भक्त है, जैसे कुंती महारानी कहती हैं कि बारंबार विपदा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसमें आपका स्मरण बढ़ता है और आपका स्मरण बढ़ने से ये जो भव बंधन है वो कट जाता। तो भक्त को जब कष्ट आए जीवन में तो भक्ति में और स्ट्रांग होना चाहिए, कमजोर नहीं हो जाना चाहिए, हमें उस अंडे की तरह होना चाहिए कि अंदर से एकदम वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसको तोड़ा भी जाता है तो केवल छिलका टूटता है, अंदर से वो टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी उतना मजबूत नहीं होता है, थोड़ा उसको काट सकते हैं। तो ऐसे होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हमें भगवान को और ज्यादा शरण जाना चाहिए। और तीसरा उदाहरण है कि जहां पर कॉफी के बीज, तो उन्होंने क्या किया, कॉफी के बीजों ने अपना अस्तित्व समाप्त करके सारे वातावरण को अपने जैसा बना दिया। ये भक्तों को करना चाहिए कि भक्तों को सब तरफ जो उनके पास है, जैसे कॉफी के बीज में क्या था, कॉफी की सुगंध उन्होंने सब जगह फैला दी, ऐसे भक्तों के पास भगवान की भक्ति की सुगंध होती है, उसको सब जगह फैला देना चाहिए। तो कष्ट आए तो और ज्यादा जोर से प्रचार करना चाहिए और फैलाना चाहिए, आपस में आसपास जितना भी वातावरण है उसको भक्तिमय बना देना चाहिए। तो अर्थात अगर हम अपने आसपास प्रचार करते रहें भगवान की भक्ति का, तो कष्टों के समय में भी आसपास वाले या आसपास हमारे भक्ति का वातावरण बना रहेगा। तो इस दृष्टि से हमें हमेशा भगवान की भक्ति के प्रचार पे ध्यान देना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि उनकी कृपा के बिना भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो ये हमें आज के दिवस पर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे वृंदावन में और कई स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु गए, अलग अलग स्थानों में गए, विशेषतः अक्रूर घाट पे वो रहा करते थे और दिन में जाते थे वृंदावन, शाम को फिर वापस आ जाते थे अक्रूर घाट में रहने के लिए। और ऐसे जहाँ भी गए उन्होंने कीर्तन किया, बहुत से लोग उनके साथ हो लिए, कई स्थानों पे वो गए। आज भी हम जब वृंदावन जाते तो कई स्थान हैं जहाँ महाप्रभु की बैठक है, इमली तला इत्यादि जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए। तो ऐसे सब स्थानों पर भक्तों को जाकर वैसे ही कीर्तन करना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, तब हम लोग वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा समझ सकेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए वैराग्य सिखलाने के लिए, विद्या ज्ञान सिखलाने के लिए। किस चीज का ज्ञान? भक्ति का ज्ञान, जिससे भक्ति उत्पन्न हो ऐसा ज्ञान, जिससे भक्ति का नाश हो ऐसा ज्ञान लेकर कोई लाभ नहीं। जैसे वैराग्य भी अनुवाद में प्रभुपाद ने लिखा शब्द के वैराग्य में, कृष्ण भावना के विरुद्ध जितनी भी चीजें उनसे वैराग्य, वो सच्चा वैराग्य। तो वैराग्य विद्या और निज भक्ति योगा। तो भगवान की भक्ति करना बड़ा सरल है, अगर कुछ काम हम लोग कर ले बाकी चीजें कृष्ण संभाल लेंगे। हमारा कार्य अपना, हमारा एक सीमा है, हम अपनी सीमा में कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, बड़ी अच्छी तरह से जप करना चाहिए। दूसरी चीज, नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। हम लोग कभी कभी जब भक्ति में थोड़े वरिष्ठ हो जाते हैं, समय बिता देते हैं, तो नियमों के पालन में ढिलाई करने लगते हैं, नियम कड़ाई से पालन नहीं करते। तो इसलिए हमें पहली चीज जपा बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, नियम का पालन बड़ी कड़ाई से करना चाहिए, हृदय में नम्रता को लाना चाहिए। जब तक नम्र हृदय नहीं है चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते, वो आपके ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं करेंगे अगर आपके हृदय में नम्रता नहीं है। और चौथी चीज, प्रामाणिकता। अगर ये चार चीजें हैं तो बाकी चीजें कृष्ण संभाल लेंगे। हम लोग जप करें बड़े ध्यान पूर्वक, हम लोग नियमों का पालन कड़ाई से करें, हम लोग हृदय में नम्रता को लाएं और प्रामाणिकता को छोड़े नहीं। प्रामाणिकता का अर्थ है धोखा नहीं देना। प्रामाणिक रहें तो निश्चित कृष्ण की कृपा हम सब पर आएगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृपा को देने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो एक भजन को गाएंगे अंत में, ये भजन बहुत प्रिय था, चैतन्य महाप्रभु का भजन है, ये प्रभुपाद को बहुत प्रिय था। परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, पेज नंबर 67 पर है, 67। परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, परम करुणा परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, परम सब अवतार सब अवतार
हर शिरोमणि केवल आनंद कंद परम करुणा बहु दुर्जना निताय गौरचंद परम तप अवतार हर शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद भजो भजो भाई कल्पन निताय सुदृढ़ विश्वास करी भजो 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 भाई कल्पन निताय सुदृढ़ विश्वास करी भजो भजो विषय छड़िया विषय छड़िया रस मजिया मुख बोलो हरि हरि विषय विषय छड़िया बोलो हरि हरि मुख बोलो हरि हरि करम करुणा बहु दुर्जना निताय गौरचंद
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दुई जन आए हैं परम करुणा को बरसाने के लिए निताय गौरचंद और हैं कौन ये सब अवतार सारे शिरोमणि सारे अवतारों के स्रोत वही श्री कृष्ण अब एक भक्त के रूप में आए हैं और भक्ति का एक ऐसा मार्ग दे रहे हैं केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी भजो भगवान का भजन, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन, रजो गजो भाई चैतन्य निकाय, दृढ़ विश्वास से होना चाहिए। ऐसा विश्वास कि हमारे जीवन की पूर्णता केवल गौर निताई के भजन में है, हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन में आनंद केवल भजन में है, इसलिए भजन करें। लेकिन भजन किस भाव में होना चाहिए? विषय छड़िया तेरस महिया मुख बोलो हरि हरि, विषय वासनाओं को छोड़ना है और अभी जिन चीजों में रस ले रहे हैं भगवान के नाम में रस लेना प्रारंभ करना है। लेकिन हमारी जीभा को वो रस आता ही नहीं है, हमें तो भौतिक भोगों का रस है, इस शरीर से संबंधित आनंद का रस है। तो कैसे हम भगवान की भक्ति का रस ले सकते हैं? उसका एक ही मार्ग है, मुझे बोलो हरि हरि, मुझे बोलो हरि हरि, देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता, देखो देखो रे भाई त्रिभुवन नाई मन दयाल दाता, देखो पशु पक्षी जुड़े, पशु पक्षी जुड़े पाषाण विदरे सुनि जारे गुण गाथा, पशु पक्षी जुड़े देखो रे भाई त्रिभुवन नाई। इस पूरे त्रिभुवन में तीनों लोकों में एमोन दयाल दाता है, ऐसी दया करने वाला और कोई नहीं है। इनकी दया की कथा सुनकर पशु पक्षी झूले पाषाण विदर, पशु पक्षियों के भी शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और इनकी कथा ऐसी है, पाषाण विदरे पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा हृदय पत्थर से भी कठोर है। और अगर इस कठोर पत्थर को भगवान की भक्ति में लगाना है, बारंबार सुनि जर गुण गाथा, सुनि जर गुण गाथा, संसार
हरे मंदिरा लोही मिटोड़िया से बद नहीं लो संसार संसार मदिया रोही मिटोड़िया से बद नहीं लो
अगर भगवान का नाम नहीं लिया मुख से बोलो हरी हरी और या फिर कथा श्रवण नहीं किया सुनी जा रहा गुण गाथा तो फिर क्या होगा संसारे मटिए रोही लिपोड़िए से पदे नहीं लो आशा कोई आशा नहीं है हमारे लिए इस संसार में पड़े रहेंगे इसी में आनंद लेते रहेंगे और केवल कष्ट मिलेगा हमें आनंद के नाम पर। इस जगत का आनंद केवल कष्ट है, थोड़े समय आनंद देता है और फिर कष्टों का साथ है। और ये सब होता है अपन कराम अपन कराम गुंजाय समान कर लो समदास अपन अपन कराम गुंजाय समान लोचनदास
संसार में पड़े हैं आपन कर्म अपने अपने कर्मों के चलते कभी एक जीवन तो कभी दूसरा जीवन बड़े भाग्य से ऐसी अग्नि का शमन होता है कि जहां हमें भक्त मिलते हैं भक्ति मिलती है और भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम ही सर्वमहात्मा सुदुर्लभा। हम सबको ये भक्ति चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कई कई जन्मों के बाद मिला है। आइए उनकी कृपा को समझें, उनके द्वारा दिए गए मार्ग को पालन करें और उस मार्ग का पालन करके अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें।
परम करुणा बहु दुर्जना निवारि भवसंग परम परम करुणा बहु दुर्जना निवारि भवसंग प्रभु अवतार हर चिरमानी केवल आनंद संग आनंद छंद केवल आनंद छंद केवल केवल आनंद छंद केवल आनंद छंद केवल आनंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कलियुग पावन कलि भरनाथन जिसके नंदन गाओ रे कलियुग कलियुग पावन कलि भरनाथन जिसके नंदन गाओ रे कलियुग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय 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 सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय सचिन जय जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय 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 सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय सचिन जय जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय 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 सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे जय गौरा 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 हरे गौरा 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 हरे जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिन जय जय सचिनंदन गौर हरे गौर 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 हरे गौर गौर
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटिवैष्णवृन्दकी प्रभुपादकी आज शाम को 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा भजन और 6:30 बजे अभिषेक 7 बजे के बाद अभिषेक के बाद प्रवचन और फिर आरती और प्रसाद सबके लिए होगा। कृपया शाम तक भगवान का अभिषेक होने तक निर्जल उपवास रखें। हरे कृष्ण। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं, इसलिए आप सबके लिए एक छोटी सी भेंट है। ये मायापुर से नरसिंह देव का ऑयल है जो भगवान नरसिंह देव को शरीर पे लगाया जाता है और फिर महाप्रसाद के रूप में भक्तों के लिए दिया जाता है। तो आज चैतन्य महाप्रभु को याद करने के लिए मायापुर से आपके लिए ये भेंट आई है, आप लोग आके लगवा सकते हैं ताकि दिन भर कम से कम चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता रहे। थोड़े जल्दी आगे सब लोग आ जाइए, इंतज़ार मत कीजिए। आपका बाकी है और माता जी आपका बाकी है। ये माता जियों को कोई लगा लीजिए, आप माता जी लीजिए, सबको लगा दीजिए और वापस दे दीजिएगा।